इंशाल्लाह आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरा हो और इसके बाद का आने वाला वक्त भी खैर व आफियत से गुजरे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आखिर तक हमारा साथ दीजिए और हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं छोटे से वक्त के बाद।
जी नाज़रीन, सबसे पहले हमारे पते और टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए आप। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sehartv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@sehartv.ir। और अगर आप इस प्रोग्राम में हमसे बातचीत करना चाहें तो हमारे स्टूडियो के चार नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा कंट्री कोड है 0098, सिटी कोड है 21 और चार टेलीफोन नंबर हैं इस स्टूडियो के 2226528 04 से लेकर 0506 और 07। आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा। तो हस्ब मामूल आगाज करते हैं इस हफ्ते की मुनासबतों से। और शाइस्ता बहन, कौन सी अहम मुनासबतें हैं?
जी, एक अहम मुनासबत जिसका दिन कल था, गुज़श्ता रोज हफ्ते के दिन, और वो था बीबी मासूमा फातिमा कुम, जिनका मरकद मुतहर कुम में है। और उनके सिलसिले में हमने पिछले हफ्ते बात की, उनका वफात का दिन था। और इसके अलावा इस हफ्ते में चूंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ईद नौरोज़ के दिन करीब है, यहाँ पर ईरानियों की एक बहुत ही मशहूर ईद है, यहाँ की ईरान के अंदर इसको बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जाता है। बहार का दिन आता है तो इसको बड़े ही अच्छे अंदाज से मनाते हैं ईद नौरोज के नाम से। इससे पहले यहाँ पर नेकुकारी का दिन मनाया जाता है, यानी ये ऐसा दिन होता है कि जिसमें एक तरह से ईद के लिए जब सब तैयारियां कर रहे होते हैं तो जाहिर है माशरे के अंदर ऐसे अफराद भी होते हैं जिनकी इतनी इस्तेदाद नहीं होती है कि वो अपनी तमाम जरूरियात को पूरा कर सकें, तो उसके लिए एक खास, एक बड़ा ही अच्छा दिन का इंतखाब यहाँ पर किया जाता है, जिसमें बाहर घरों से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर काउंटर लगाए जाते हैं और जो अफराद इस्तेदाद रखते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास है कि वो किसी की मदद कर सकते हों, तो फिर वो जाते हैं, जो भी उनके पास चीज़ है, पैसे हैं, तो वो पैसे के जरिए से मदद करते हैं। वहाँ पर एक बॉक्स रखा होता है, उसमें पैसे डालते जाते हैं। इसी तरह से अगर कुछ वो लिबास खरीदा है, उन्होंने लिबास तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करके वो वहाँ पर उस काउंटर पर रखते हैं। और फिर कुमिता इमदाद इमाम खुमैनी, जो इमाम खुमैनी इमदाद कमेटी के नाम से यहाँ पर है, वो इसको मुस्तहकीन तक पहुँचाती है। एक तो ये दिन हो गया जिसको के रोज़े नेकुकारी कहा जाता है, और इसके अलावा शजरकारी का भी दिन इस हफ्ते में मनाया जा रहा है। और जाहिर है कि शजरकारी तो खैर से हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी होती है जब ये बाहर के दिन आने लगते
हैं। अभी इन्हीं दिनों में शुरू है वहाँ पर,
शुरू है, और यहाँ जी वहाँ का मौसम कुछ थोड़ा सा हल्का हल्का पाकिस्तान में हिंदुस्तान में बदल चुका है। जैसे यहाँ तेहरान में अभी काफी ठंडक ही चल रही है, लेकिन इस हफ्ते से तकरीबन शजरकारी का भी आगाज हो जाएगा।
तो बहरहाल बाहर के दिन करीब है और हम देखते हैं कि ईरान में नौरोज की खुशियां जो हैं वो लोग उनको मनाना शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए जैसे कि आपने कहा कि जश्न नेकुकारी, उसका भी एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह हमारे यहाँ ईद के मौके पर लोग खरीदारियों में मसरूफ होते हैं,
बिल्कुल
यहाँ पर सेलें भी लग रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, बाजार है। और बहरहाल जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है कि ईद की खुशियों में दूसरों को भी शरीक किया जाए, तो बयान ही यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ईद की खुशियों में चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इनके साथ शरीक हों। बहरहाल ये ईद का त्यौहार ऐसा है, खास तौर पर बाहर की ईद का, कि न सिर्फ ईरान में बल्कि अब तो अक्वामे मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर ईद नौरोज को एक बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल के उन्वान से इसको मंजूर किया है। और ईरान के अलावा बहुत से दीगर मुल्कों में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ईरान में ईद के तौर पर और दूसरे मुल्कों में एक फेस्टिवल के तौर पर, खासतौर पर चीन में इस हवाले से बहुत ही ज्यादा प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, सकाफती प्रोग्राम होते हैं, बाहर के सिलसिले में प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा और भी
अफगानिस्तान में है,
अफगानिस्तान में,
हिंदुस्तान में, कश्मीर में बाकायदा तौर पर बिल्कुल ईरानी स्टाइल में, अलबत्त वहाँ 3 दिन का होता है। ईरान में जैसे आमतौर पर 15 दिन कहे जाते हैं, यानी सरकारी तौर पर 15 दिन की तकरीबन छुट्टी होती है, तो लेकिन एक महीने तक खैर से एक दूसरे के यहाँ दीदोबाजी जिसको कहें आमदोरफ एक दूसरे से मुलाकात करने का सिलसिला चलता रहता है, और ये यहाँ पर माशाल्लाह से पूरे साल भी चलता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और अहम मुनासबत जो इस हफ्ते में बल्कि 2 दिन पहले गुजरी है वो इंतखाबात की थी। और नाजरीन आपने जैसा कि खबरों में भी सुना होगा कि इस मर्तबा ईरान के जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं उनमें लोगों ने रिकॉर्ड शिरकत की है। तकरीबन 65% लोगों ने अपना हक रायदेही इन इंतखाबात में इस्तेमाल किया है। और हम ये देखते हैं कि पिछले जो 2 पार्लियामान इंतखाबात ईरान में गुजरे हैं उनकी निस्बत इस दफा वोटिंग की शरह जो है वो ज्यादा रही है। और मैं समझता हूं कि जितनी धमकियां ईरान के खिलाफ बढ़ती जाती हैं उतना ही ईरानी आवाम का जोश और जज्बा जो है वो
बढ़ता जाता है। बिल्कुल 100% ये आपके जुमले की मैं इसलिए भी तायद करूंगी कि मैं खुद जुमे के दिन की ही बात है कि हम लोग बीबी मासूमा कुम की जियारत के लिए जब गए हैं तो मैं बड़ी खुश थी और अपने शोर से मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी हम हरम में चलें, हरम में तो आज खलवत होगी, यानी खुद जहां पर जरी है। और हकीकत यही थी, क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो आवाम थी वो वोट की लाइन में थी, यानी मैंने खुद देखा है वहीं हरम के सहन में वोट देने की जो लाइनें थी मर्दों की भी औरतों की भी बहुत लंबी थी। और इसके अलावा ये फिर सिलसिला चलते चलते 10 बजे रात तक इसको वक्त बढ़ाया गया, और हमने देखा है ये बात मुसलसल टीवी पर तकरीबन जितने भी ये स्टेशन यानी थे जहां पर वोटिंग का एहतमाम किया गया था, बाद शहरों में शदीद बर्फबारी हो रही थी और एक खातून को दिखाया गया कि उसका 45 दिनों का बच्चा था, वो गोद में और एक बच्चा हाथ में पकड़े हुए, 2 बच्चों के साथ ये तन्हा खातून आई थी। और उसका कहना था कि इससे पहले वो 2-3 पोलिंग स्टेशनों में गई है और वहां देखा कि भीड़ बहुत शदीद है और जाहिर है 2 बच्चे, बर्फबारी हो रही है, सर्दी, तो कहती मैं घूमते घामते इस पोलिंग स्टेशन में आई, देखा यहाँ थोड़ा सा जो है मेरे नौबत आ जाएगी, यानी ये आलम था। बकौल आपकी बात की तायद करते हैं दोबारा से कहूंगी कि माशाल्लाह जो 202 बहमन के मुजाहरे हुए थे, ये जो रैलियां निकाली गई थी वो पिछले साल जब हमने देखी तो हमें लगा बहुत ज्यादा है, लेकिन इस साल उसमें भी जोश व खरोश बहुत था और इसी तरह वोटिंग में भी।
जी, तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त चलते हैं अपने अगले आइटम की तरफ और ये है आइंदा हफ्ते में नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील।
प्रोग्राम तारीखी इमारतें हर हफ्ते बरूस पीर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। हमारा नया प्रोग्राम कामयाबी की राहें हर इतवार को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इतवार को हमारा प्रोग्राम शम्म-ए-फ़िरूज़ान भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं।
काश के हसीन और हरे भरे इलाके के पास और फारज़म सूबे के बाहर रस्ताक नामी गांव आबाद है।
हर मंगल को हमारा प्रोग्राम कहकशां भी आप देख सकते हैं। اقبال اور اسلامی دنیا کا اتحاد، یہ پروگرام ہر ہفتے بدھ کے روز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیگر پروگراموں کے ہمراہ ہر جمعرات کو پروگرام آخری زمانہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نیا ڈراما سیریل جس کا نام ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو مختلف سماجی موضوعات پر بنایا گیا ہے، ہر روز آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پروگراموں کے ہمراہ پروگرام زاویہ نگاہ جمعے کے روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پروگرام ایران امروز ہر پیر کے روز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام اخبارات کا جائزہ جمعے کے علاوہ ہر روز آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری صبح کی نشریات میں نشر ہونے والا پروگرام صبح زندگی جمعے کے علاوہ ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔
جی ناظرین، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ہفتہ بھر میں نشر ہونے والے ہمارے پروگراموں کی تفصیل۔ ناظرین، ہم عام طور پر اپنے اس پروگرام میں ٹیلی فون نمبرز بھی بتاتے ہیں جس سے ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک ای میل پڑھتی ہوں، اس کے بعد اسفر بھائی آپ کو یہاں کے فون نمبرز بتائیں گے جس سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں گے اور اپنی آرا سے ہمیں نوازیں گے۔ جناب، یہ ای میل ہے بھیجیے جو ہمیں سعودی عرب سے اذہان اور شجان، اگر میں صحیح تلفظ کر رہی ہوں ان کے ناموں کا۔ ہم کو آپ کا پروگرام بہت پسند ہے، ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، اس ٹائم میں میں اور میرے بچے سکول جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نشریات بہت مشکل سے دیکھ پاتی ہوں۔ आपके हर प्रोग्राम में एक नसीहत होती है, बहुत अच्छी नशरियात हैं आप लोगों की। अब इसमें वाजे नहीं हुआ कि ये किस टाइम की बात करें, हमारी सुबह की नशरियात की या शाम की नशरियात की।
बहरहाल स्कूल की बात है तो शायद सुबह की हो, तो अगर इनका दोपहर के बाद अगर सेकंड टाइम इनका स्कूल है तो हो सकता है कि शाम के प्रोग्रामों की बात कर रही है। बहरहाल जो भी है तो हमारे अपने प्रोग्राम के टाइमिंग्स हैं, लोगों के मुताबिक करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि अगर इस टाइम को अगर चेंज कर दे तो फिर दूसरे लोग कहेंगे हम,
उनको शिकवा हो जाएगा।
बिलफर्ज ऑफिस में है या दुकान पे है या किसी और जगह पे है, काम में मसरूफ है। तो बहरहाल हमारे प्रोग्राम के टाइमिंग्स हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको बढ़ा के 24 घंटे का कर दिया जाए ताकि जब भी आप चाहें अपने प्रोग्राम देख सकें, आपको कोई मुश्किल पेश ना आए।
जी, एक कॉलर है इस वक्त लाइन पर, हम उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
जी मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ, जुल्फकार अली।
जजीरा किश्म से बात कर रहे हैं?
ईरान के जजीरा किश्म से,
कश्मीर से
बात कर रहे हैं।
से बहुत खुश आमदेद। आपने अपना नाम क्या बताया? जुल्फ़िकार अली, कश्मीर।
जी बहुत खुश आमदेद जुल्फ़िकार अली साहब प्रोग्राम में, कहिए क्या कहेंगे।
जी बस हमारी जो मांग की, इसके बारे में मैंने फोन किया था कि इस चैनल को कम से कम 24 घंटे कर दिया जाए।
जी
आप टेलीविजन की आवाज बिल्कुल बंद कर दें।
24-25 चैनल चलते हैं
जी, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टेलीफोन के जरिए हमसे बात करें।
जी जी
जी
फरमाइए।
तो ये सुसार टीम को अगर 24 घंटे कर दिया जाए तो वो ठीक रहेगा।
समझ
जी, मुझे समझ नहीं आई आप, क्योंकि आवाज हमें वाजे तौर पर मौसूल नहीं हो रही है आपकी। आप दोबारा से रिपीट कीजिए अपना सवाल।
जी इस चैनल को कम से कम 24 घंटे कर दिया जाए।
24 घंटे का कर दिया जाए आप ये कहना चाह रहे हैं?
जी जी
जी जी जुल्फ़िकारिल साहब पहले भी अर्ज किया कि आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, वो गूंज के आती है आवाज दोबारा से, तो हमसे बातचीत करने में मुश्किल पेश आ रही है। टीवी की आवाज बंद करके हमसे बातचीत कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जो फरमाइश है और दीगर नाजरीन जो हैं उनकी फरमाइश के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल को 8 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे का कर दिया जाए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीद है इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। बहरहाल आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और अपने दीगर नाजरीन से भी हम गुजारिश करेंगे कि जब भी आप हमसे टेलीफोन पर बातचीत करें तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए और टेलीफोन के जरिए हमसे बात कीजिए, इस तरह बेहतर तरीके से हमारी बातचीत हो पाएगी। और हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट कर लीजिए, हमारा कंट्री कोड है 0098, सिटी कोड है 21 और 4 नंबर है हमारे 2265280 से लेकर 0506 और 07। जी तो जी, अगला ईमेल किसका है?
ये हमारी एक बहन है फरहत तालपुर साहिबा, कराची पाकिस्तान से, मुझे इनका नाम याद है। इन्होंने इसमें याद दहानी भी कराई है कि मैं आपकी पुरानी व्यूवर हूँ। और फरहत साहिबा, हमें याद है कि आप हमारी बड़ी अच्छी मुस्तकिल नाजरीन में से थी।
जी,
अलबत्ता नहीं, इनका इन्होंने आगे लिखा है कि मैं चूंकि पाकिस्तान से बाहर थी इसलिए आपसे राबिता नहीं रहा, तो अब दोबारा से जाहिर है ये आई होंगी अपने वतन लौटी हैं, तो दोबारा से हमारे साथ इन्होंने राबिता किया है। आपकी बेहतरीन ट्रांसमिशन को और ज्यादा तरक्की पर देखकर यकीन करें बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह पाक सेहत टीवी को और ज्यादा तरक्की दे, आमीन। एक प्रॉब्लम हो गई है कि आपकी ट्रांसमिशन हम सही तौर से नहीं देख पा रहे, पिक्चर हो या बातचीत चल रही हो कट कर आती है और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। प्लीज इस गुजारिश पर तवज्जो दीजिए ताकि हम प्रोग्राम अच्छे तरीके से देख सकें।
जी तो मेरा ख्याल ये डिश के जरिए हमारे प्रोग्राम देखती हैं और डिश की सेटिंग थोड़ी मेरा ख्याल इनकी खराब हो गई है, तो इनसे गुजारिश है कि किसी माहिर को बुलवा कर उसकी सेटिंग थोड़ी सी आप सही करवा लें। मुमकिन है थोड़ा सा एलन भी हिल गया हो या डिश हिल गई हो, जिसकी वजह से सिग्नल साफ तौर पर आपको मौसूल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से तस्वीर कट कट के आती है या आवाज कट के आती है। ये आपकी डिश की सेटिंग से इसका ताल्लुक है, उसको सही करवाएं तो इंशाल्लाह प्रोग्राम आप सही तरीके से देख पाएंगी।
जी, रियासत जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट करगिल से हाजी मोहम्मद अली वल्द गुलाम मोहम्मद, अबुल हसन वल्द मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द शेर मोहम्मद, इन सब की जानिब से एक तवील सा ईमेल मौसूल हुआ है जिसको मैं इख्तिसार के साथ पेश करती हूँ। लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम हर रोज पाबंदी से देखते हैं, हमारे लिए आपके सारे प्रोग्राम इंतहाई मुफीद और सबकामोज हैं। इनकलाब ईरान पर इन्होंने काफी खूबसूरत सा एक मजमून लिख डाला है और मुख्तसरन मैंने यहाँ पर नोट किया है। 11 फरवरी 1979 का जो इनकलाब ईरान का सूरज तुलू हुआ, वो सारी दुनिया पर साया फगन हुआ। आहिस्ता आहिस्ता फरजंदा ने तौहीद के नूर ईमान में और भी इजाफा हुआ। ये इनकलाब हर तरफ तौहीद की किबरियाई का नारा बुलंद करने के लिए आया। ये इनकलाब आया अबू लहब की झूठी सियासत का भांडा फोड़ने के लिए। सद्दाम यजीद और उसके पैरोकारों की नहुसत को मिटाने के लिए। फिरौन वक्त अमरीका और इसराइल को हिदायत देने के लिए मूसाए जमान बनकर उभरा। फिरौनी लश्कर को दरियाए नील में खुदाए कादर मुतलक ने गर्क करके ताअबद इबरत का जो दर्स दिया। और इसी तरह से फिरौन सानी अमरीका के जंगी हेलीकॉप्टर्स को 30 साल पहले तबस के मैदान में नाबूद करके बनी नो बशर को हैरान कुन मौजजा दिखाया।
तो बहरहाल करगिल कश्मीर से हम अपने इन तमाम नाजरीन का, हाजी मोहम्मद अली और दीगर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस्लामी इनकलाब के बारे में इतनी अच्छी गुफ्तगू इन्होंने हमारे लिए इरसाल की और यकीनन हमारे नाजरीन ने भी इससे इस्तेफादा किया होगा।
जी। अच्छा, एक और हमें मौसूल हुआ था पिछले हफ्ते, इसको मैं शामिल नहीं कर सकी, बाज़ दफ़ा ईमेलों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बार भी मैं अपने नाज़रीन से कह दूं कि कुछ ईमेल्स में आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकी हूँ, ऐसा ना समझें कि हमें मौसूल नहीं हुए हैं या हमारे हाथों से नहीं गुजरे हैं। ईमेल्स मैंने सारे पढ़े हैं लेकिन उनको मैंने अगले हफ्ते के लिए रखा है, तो ये ईमेल भी पिछले हफ्ते का है। सदाकत तूरी ने पारा चिनार से लिखा है कि गुज़श्ता जुमे को यहाँ पारा चिनार में बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ। दिल को दहलाने वाली बात यह थी कि जब दहशतगर्द तबाही मचा के अपने होटल चले गए तो बिखरी हुई गमजदा आवाम मुजाहरा करती हुई होटल की जानिब जब गई तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियों के जरिए से हमें तसल्ली और दिलासा दिया और दूसरी जानिब हेलीकॉप्टर के जरिए से दहशत गर्दों को होटल से खारिज किया गया। पारा चिनार की गयूर आवाम के साथ ये किस कदर जुल्म और सितम है कि हम अपने दुखों पर आहोजारी भी नहीं कर सकते और एहतजाज भी नहीं कर सकते।
तो पारा चिनार के वाकई के हवाले से इन्होंने हमें भेजा, ईमेल भेजा, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और पारा चिनार का जो वाकया था, बहरहाल हम दिल की गहराइयों से उसमें जिन अफराद का जानी नुकसान हुआ उनके अहल खाना से ताजियत करते हैं। और ये बहरहाल हुकूमत वक्त का ये फर्ज होता है कि वो शहरियों के जानो माल की हिफाजत करे और जो दहशत गर्द अनासिर हैं उनकी सरकोबी करे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि दहशत गर्दों की सरपरस्ती की जाती है और खुद जो मज़लूमीन हैं उनके साथ इंतहाई इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है जो कि एक हुकूमत के शायान शान नहीं होता है। और इससे कुछ शहरियों के अंदर मायूसी नाउमीदी पैदा होती है और ये नाउमीदी और मायूसी बहुत सी दीगर मुश्किलात को भी जन्म दे सकती है। तो हमारा बहरहाल हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि वो जो मजलूमीन हैं उनके जो उन पर जो जुल्म करने वाले हैं उनको पकड़े और उन्हें करार वाकई सजा दे ताकि आइंदा से इस किस्म के वाकयात रुनुमा ना हो।
जी, तो भैया अब हम चलते हैं अपने हर हफ्ते के इनामी मुकाबले के सवाल की जानिब। आइए मिलके देखते हैं, फिर इस सवाल के बारे में हम आपसे बात करेंगे।
जी नाज़रीन, अभी आपने इनामी मुकाबले का सवाल देखा, मैं दोहराई देता हूँ। कौन सा सूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सूरे के नाम से मारूफ है? चार ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, अलिफ बकरा, फे फज्र, बे फज्र, जीम नूर और दाल फलक। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो सही जवाब हमें आप भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए, urdu@sahartv.ir urdu@sahartv.ir। और अगर आप इस प्रोग्राम में हमसे बातचीत करना चाहें तो हमारे नंबर नोट कर लें, 00982 1, और चार नंबर हैं 2265-2804 से लेकर 07 तक। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, और अगर आप प्रोग्राम के आखिर में कॉल्स करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम इनके साथ तफसीली बातचीत कर सकें, प्रोग्राम वाइंड अप करना होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर प्रोग्राम के शुरू में या वसत में हमसे बातचीत कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
जी हाँ, पिछले हफ्ते भी हमारे एक नाज़िर ने बिल्कुल आखिर में हमें फोन किया और उन्होंने कुछ सवालात पूछे, और हमने उनसे यही कहा था कि अगले हफ्ते हमें फोन करें या अपना नंबर दे दें, हम उनको फोन करेंगे ताकि उनके सवालात के जवाबात दिए जा सके। अब जाहिर है उनकी तरफ से हमें कोई कॉल नहीं आई, और मैं यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूं कि पिछले हफ्ते में जो इनामी मुकाबला हमारे दो विनर्स ने जीता था, उनमें उन अफराद को हमने यहाँ से इंशाल्लाह उनका इनामी मुकाबला में जो जीतने का इनाम दिया जाता है वो इनाम उनके लिए भेजा जा रहा है, जब उन तक पहुंच जाए तो इसकी इत्तला हमें दें, क्योंकि इन विनर्स में से एक ने हमें ईमेल भेजी थी कि उनका इनाम उन तक नहीं पहुंचा है। सर, हमारे पास उनका पोस्टल एड्रेस नहीं था, अगली ईमेल में
बात ये कि फौरन इनाम नहीं पहुंच जाता, थोड़ी देर लगती है, और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि दो एक इनाम इकट्ठे हो जाए ताकि हम उनको भेज दें। बहरहाल इस वक्त हमारे पास एक कॉल भी मौजूद है, देखते हैं कौन कहां से। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी प्रोग्राम में खुश आमदेद।
हाँ, बोल रहे हैं अली मां कश्मीर से।
जी जी,
कश्मीर से। जी जी,
आप इसमें ग्रामी
अली मोहम्मद गालिबन, अली मोहम्मद मेल अगर हमने पढ़ी हो।
हेलो
जी जी, हम तक आपकी आवाज पहुंच रही है। अली मोहम्मद साहब,
उर्दू चैनल के बारे में कह रहे हैं कि ये कम से कम ये
लाइन ड्रॉप हो गई।
लाइन ड्रॉप हो गई है,
हमें बहुत ही अफसोस है कि इनसे हमारी बातचीत नहीं हो सकी। इंशाल्लाह दोबारा लाइन मिलेगी तो इनसे बातचीत करेंगे।
ये हमारे दूसरे कॉलर थे कश्मीर से।
जी,
तो बहरहाल हम अपने कश्मीर के नाजरीन को भी एक बार फिर इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। बहुत ही इन नाजरीन की मैं तारीफ करूंगी इस हवाले से भी कि हमेशा अपनी ईमेल्स के जरिए से हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, ईमेल्स और भी हैं, अब देखते हैं कि कितना हमारे पास टाइम है। अगला आइटम अगर अभी तैयार नहीं है नश्र होने के लिए तो मैं ये ईमेल
पढ़ दीजिए, उसके बाद
बीच में अगर हमें बताया गया तो हम आधा आधा करके। ये ईमेल बहुत लंबा है, आमिर महमूद साहब ने पाकिस्तान से हमें भेजा है, 3-4 सफों का ये ईमेल है। लिखते हैं कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वहाँ शिया मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, और मैं ये भी बताता चलूं कि मेरा ताल्लुक भी शिया मसलक से नहीं है, मगर मैं मसले की बहस से गुरेज करता हूँ। गुज़श्ता दिनों सहर टीवी के एक प्रोग्राम में नौजवानों की इस्लामी बेदारी के मौजू पर बात हुई, और इसमें ईरान के मजहबी रहनुमा की तकरीर भी दिखाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई हम्बली, शाफी, जैदी, हनफी या मालिकी नहीं। हमारा कुरान, काबा, ख़त्मुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, अहले बैत और अल्लाह एक है, तो हम एक उम्मत हैं, हम उम्मत वस्त हैं जिसका बराह रास्त मुकाबला शैतान, दज्जाल और उसके हलीफों यानी सहूनी और सहूनी ईसाइयों से है। इसके बाद लिखते हैं कि मेरा इस पैगाम का मकसद चंद गुजारिशात हैं। जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ अहले तशय्यो के बारे में अजीब व गरीब बातें, जिनको अफवाहें कहना ज्यादा मुनासिब है, पाई जाती हैं।
जी, और इसको मेरा ख्याल कंटिन्यू करेंगे
इंशाल्लाह।
तवील है चूंकि मैंने इसलिए रोका आपको कि इस वक्त टेलीफोन भी हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम अलैकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
मैं नवाज शरीफ बात कर रहा हूँ जी, सऊदी अरब से।
जी, सऊदी अरब से नवाज शरीफ साहब, क्या हाल चाल है?
ठीक
ठाक जी, आप सुनाओ ठीक हो जी। आपको प्रोग्राम देखना है जी, क्या 3 बजे लगता है इधर उर्दू में
जी,
पहले तो और जबान होती है
जी। जी इससे पहले इंग्लिश में होता है।
हाँ जी
जी,
ये 24 घंटे उर्दू में नहीं चलेगा?
इंशाल्लाह चलेगा, कोशिश कर रहे हैं और कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि 24 घंटे आप यहाँ से उर्दू के प्रोग्राम देख सकेंगे।
मेहरबानी जी, ओके जी।
कुछ और आप कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्रामों के हवाले से? आप कितने अरसे से हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और कौन से प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
ये तो हमने अभी 1 महीना हुआ डिश लगाई है, ये अभी चैनल निकाला है।
अच्छा।
कल मैं देख रहा था, अभी तुम्हारा ये उर्दू चैनल चल रहा था 3 बजे
जी,
अभी
जी।
हम देख रहे हैं इधर
जी ईरान।
अच्छा,
के
तो कैसा लगा आपको ये चैनल?
चैनल बहुत अच्छा है जी, जबरदस्त।
अच्छा, तो आप इंशाल्लाह आइंदा इसको कंटिन्यू रखिए, प्रोग्राम देखते रहिए और फिर प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा।
इंशाल्लाह जी, प्रोग्राम देखेंगे और इजहार करेंगे जी
इंशाल्लाह। और आपके साथ कितने अफराद हैं इस चैनल को देखने वाले?
अभी हम 3 आदमी बैठे हैं इधर।
अच्छा
अच्छा, तो आप अपने दूसरे साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। ये एक ऐसा चैनल है कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह
बड़े शौक से देखते हैं
जी। जी, यहाँ बहुत मुसलमानों में जितने भी लोग हैं उर्दू जबान को समझने वाले, हत्ता के गैर मुस्लिम भी, क्योंकि हमें गैर मुस्लिमों के ईमेल भी मौसूल हुए हैं जिससे अंदाजा होता है कि सब पसंद कर रहे हैं जो भी उर्दू जबान को समझ।
और सऊदी अरब में बड़ी तादाद है शहर टीवी के नाजरीन की।
हाँ जी, इधर हम पाकिस्तानी हैं, इधर सऊदी अरब में रहते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं
जी।
इधर बहुत आदमी
जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवाज शरीफ साहब, आपने सऊदी अरब से हमें फोन किया। उम्मीद करते हैं कि आप प्रोग्राम देखते रहेंगे और इंशाल्लाह हमसे रابطے में भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका,
खुदा हाफिज जी। तो मैं ईमेल पढ़ रही थी
जी,
आमिर महमूद साहब का, जिन्होंने बताया है कि उनका ताल्लुक अहले सुन्नत से है
जी।
और हमारा ये सहर चैनल बहुत बाकायदगी से देखते हैं और यहाँ पर टेलीफोन भी करते रहते हैं। इनके इलाके में कुछ मसाइल हैं जिसके सिलसिले में उन्होंने ये तवील ईमेल लिखी है। लिखते हैं कि हमारे इलाके में अहले तशय्यु के बारे में अजीब व गरीब बातें हैं जिनको अफवाहें कहना ज्यादा मुनासिब है। सबसे बढ़कर ये कि ये अफवाह अनपढ़ या दीन और तारीख से कम वाकिफ लोगों में पाई जाती हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में शरह खानदगी नहायत कम है। आगे लिखते हैं कि इन अजीब व गरीब बातों में जो अहम बातें हैं जो अहले तशय्यों के बारे में यहाँ पाई जाती हैं, वो ये है कि तहरीफ कुरान। यहाँ के आम लोग समझते हैं कि अहले तशय्यों कुरान को मुकम्मल किताब नहीं मानते और जाहिर है कि ना मुकम्मल होने की वजह से ये काबिल अमल भी नहीं है। और नंबर 2, मुनकरीन सहाबा कराम। मेरा ज़ाती अकीदा ये है कि सहाबी का मतलब ये है कि वो ईमान की हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हुआ और तहद ज़ीस्त इन्फाकी कैफियत जो कि इस्लाम की असल है पर कायम रहा। मगर तारीख में हम देखते हैं कि नाम नहाद सहाबी ने जमीन के टुकड़े की खातिर गासिब से अहद कर लिया। ऐसा शख्स सहाबी नहीं हो सकता। मगर पाकिस्तान में अहले तशय्यों पर सहाबा के इनकारी का इल्ज़ाम लगाकर उनको जदोकोब किया जाता है या उनकी तालीमात और अकायद से चश्मपोशी बरती जाती है, हत्ता कि उनकी बात को सुनना भी गवारा नहीं किया जाता। इसी तरह उन पर दीगर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि अहले तशय्यों का कलमा दुरुस्त और इजाफी है। फिर वुजू के बारे में और दूसरी बातें जो इनके इलाके में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं अहले तशय्यों के बारे में किस टाइप का है। आगे फिर लिखते हैं कि इस सूरत हाल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई हक बात कहने वाला नहीं है। हमारे करीबी शहर में एक अहले हदीस आलिम मौलाना मोहम्मद इसहाक हैं जो कि अल्लाह के फजल व करम से वहदत इस्लामी के लिए कोशा हैं और वो सलीम फितर रखने वाले हैं। इनके बारे में बताया है कि वो वहदत इस्लामी के सिलसिले में इन्होंने मौलाना इसहाक साहब ने बहुत काम किया है और इनकी गुजारिश ये है कि मौलाना इसहाक साहब को जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद होती हैं वहदत इस्लामी के सिलसिले में, उस सिलसिले में अगर इनको भी दावत दी जाए ताकि ये वापस जाकर इनके इलाके में दुरुस्त अंदाज में तबलीग कर सके। और इसके बाद इनका कहना ये है कि आप ऐसे प्रोग्राम दीजिए کہ جو یہ اس قسم کی افواہیں اور غلط فہمیاں ان کے علاقے میں یا پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں شیعوں کے خلاف پائی جاتی ہے، ان کی زکوٰۃ کے سلسلے میں، وضو کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، حتیٰ بعض کہتے ہیں کہ وہ تو حج نہیں کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا کے لیے صاحب کے پروگرام دیجئے کہ ان کی یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں
انشاءاللہ۔ تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم بھی بہتات کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اور اس حوالے سے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سے علماء پاکستان سے آتے ہیں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، ان میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے علماء ہوتے ہیں، اور یہ اسلامی جمہوری ایران کا موقف ہے کہ اتحاد بین المسلمین کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ تو اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، اور یہ ہے ایک پلے بیک، مل کے دیکھتے ہیں۔
میں آپ کے چینل کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس ٹیلی فلم کا موضوع جاسوسی کی داستان ہے۔
پولیسی امنیتی ہے،
اس میں کمپیوٹر انجینئر کا رول ادا کر رہا ہوں جو انٹیلیجنس کے لیے سیکورٹی کوڈ کا پروگرام بناتا ہے۔ دراصل ہماری فلم یہ بتانا چاہتی ہے کہ حکام کو بڑی احتیاط سے کام کرنا چاہیے اور دشمنوں سے پوری طرح چوکنا رہنا چاہیے۔
میں اس فلم میں حمیرہ کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ اس بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو فلم دیکھنا ہوگی۔ حمیرہ کی 70% شخصیت ابہام میں ہے اور 30% ہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حمیرہ ہے کون اور اس کی شخصیت کے زاویے کیا ہیں۔ البتہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حمیرہ کمرشل کمپنیوں کی وکیل ہے اور اس کے سامنے کیسے مسائل پیش آتے ہیں اور وہ کس طرح سے انہیں حل کرتی ہے اور وہ کن واقعات کا سبب بنتی ہے، اس کے لیے آپ کو ہماری فلم دیکھنی ہوگی۔
یہ فلم ایک خیالی داستان پر مشتمل ہے لیکن اس سے ملتے جلتے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسکرپٹ لکھتے وقت ڈرامائی لحاظ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کچھ کم کرنا پڑتا ہے، کچھ زیادہ کرنا پڑتا ہے تاکہ قابل قبول کہانی بن سکے اور اس کو فلمایا بھی جا سکے، ایسی کہانی جس کو دیکھ کر لوگ محظوظ ہوں۔
دریایی
دریائی اخبار بیچنے کی ایک دکان کا مالک ہے. البتہ اس کی دکان ذرا مختلف ہے، صرف اخبار بیچنے کی دکان نہیں ہے. میں کیا کہوں، آپ کو فلم دیکھنا ہوگی اور خود فیصلہ کرنا ہوگا.
بینندگان عزیز کا زواج کنند ببینن کہ چجوری ہے.
قصه درستی داشت به نظر من.
اس فلم کی داستان بڑی اچھی ہے اور تمام لحاظ سے مکمل ہے. اس میں جاسوسی کی فلم کے سارے عناصر پائے جاتے ہیں، اور جب یہ فلم میں نے خود دیکھی تو مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ اس میں ایکشن اور پولیس کا کام نیز جاسوسی کے مسائل بڑی اچھی طرح سے پیش کیے گئے ہیں. اس میں ایک پہلو کے حامل کردار نہیں ہیں، بلکہ اس میں بڑی مہارت سے کردار ادا کیے گئے ہیں، اور آپ ہر کردار کو الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ان کے بات کرنے کا ڈھنگ، ان کے اٹھنے بیٹھنے اور قدم اٹھانے کا انداز، سب کچھ ایک جاسوسی فلم کے لیے مناسب ہے. مختصر یہ کہ یہ بڑی اچھی فلم ہے.
ناظرین، ابھی آپ نے پلے بیک دیکھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ جب ہمیں اس پروگرام میں فون کرتے ہیں تو چونکہ مختلف ملکوں سے آپ کا تعلق ہے اور کئی ملک بہت دور ہیں، تو کافی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے ہم سے فون پر بات چیت کرنے میں. تو ہماری انتظامیہ جو ہے اس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ہم آپ کو فون کر کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ بات چیت کریں تو آپ اپنے ٹیلی فون نمبرز یا ہمیں ایس ایم ایس کر دیجئے یا ہمیں ای میل کیجئے اور بتائیے کہ کس پروگرام میں آپ ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا پروگرام اتوار کے روز نشر ہوتا ہے، تو اتوار کے روز ہم آپ سے اس پروگرام میں بات چیت کر سکتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ ہم سے بات چیت کرے اس پروگرام میں، وہ اپنے ٹیلی فون ہمیں بھیج دیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات کروں، ٹیلی فون ہمارے ساتھ
اس وقت
موجود ہے.
السلام علیکم، کون کہاں سے؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. نذیر احمد بٹ، کشمیر سری نگر سے ہوں.
جی بٹ صاحب، سری نگر سے خوش آمدید. چونکہ ٹائم بہت کم ہے، کہیے کیا کہنا چاہیں گے.
بس ہماری یہی ایک آرزو ہے کہ یہ چینل 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے
انشاءاللہ.
اور کچھ؟
بس آپ کے سبھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت ہی عمدہ پروگرام ہوتے ہیں، خاص کر یہ جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے، انداز جہان ہوتا ہے، اور آپ کی خبریں اور دیگر پروگرام بھی جو سیریلس آتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے وغیرہ بھی جو پروگرام سے ہم کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی، اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ ایس ٹی وی آئی سی چینل ہے جو فائدے کے لیے ہیں، کہ آپ دیکھو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، اپنی ماں بہنوں کو دکھاؤ، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے.
جی بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ نے فون کیا، ہمیں پروگرام پسند کیے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات چیت ہوگی. تو ناظرین، آپ ہمارے ای میل نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، urdu@sahar.tv.ir، اور ہمارا ایس ایم ایس نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے، 00447-3659-2265.
تو ہمارے جو ناظرین چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں اس پروگرام میں یا دوسرے پروگراموں میں، تو وہ ہمیں ایس ایم ایس کریں، جو کہ ایس ایم ایس نمبر بتایا، یا ای میل کے ذریعے سے ہمیں اپنا فون نمبر بھیجیں، ہم یہاں سے آپ کو فون کریں گے اور آپ ہمارے پروگراموں میں بات کریں گے.
تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اپنے ٹیلی فون نمبرز ہمیں بھیجیں گے تاکہ ہم آپ سے اس پروگرام میں بات چیت کر سکیں. تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. تو اظفر قاسمی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.